पिछले अध्याय में आपने देखा कि सानवी और आर्यन के बीच डांस होता है और आर्यन को सानवी की प्रतिभा का पता चलता है। इस अध्याय में रणवीर कपूरिया और जेसिका हॉल में आते हैं और आर्यन, सानवी और डेलाक्रुआ परिवार आर्यन के घर कॉफी पीने जाते हैं। अयान जोया से शादी करने का फैसला करता है, जिसके बाद सानवी और आर्यन के बीच गलतफहमी पैदा होती है और सानवी आर्यन का काम छोड़ देती है। जोया और अयान के बीच तलाक की बात होती है। नाउ नेक्स्ट, सुधीर ने भी भरी आवाज में कहा, और मुझे भी कोई शौक नहीं है उस पर हक जताने का। कमरे में सन्नाटा पसर गया, सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी वेद ने कुर्सी पर पीछे टिकते हुए ठंडी सांस ली और बोला, दोनों ध्यान से सुनो, ये शर्त मैंने खुद ऐड करवाई है। सभी की नज़रें अचानक वेद पर टिक गई। रुचिका ने हैरानी से पूछा, इस शर्त की क्या ज़रूरत थी? वेद ने गंभीरता से कहा, जब तुम दोनों के बीच कुछ होगा ही नहीं तो फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन मैंने ये क्लॉज इसलिए डलवाया है ताकि अगर कभी हालात बदल जाएं तो बच्चे के भविष्य के बारे में सोचकर कोई गलत कदम ना उठाना पड़े। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ, मेरी ये बात माननी ही पड़ेगी। वेद ने ऐसी शर्त क्यों रखी थी और क्यों उसे उनके अग्रीमेंट के बीच डाला था, इसका सच सबको बहुत जल्दी ही पता चलने वाला था। वेदांत को ज़िंदगी का कुछ एक्सपीरियंस था, शायद इसी वजह से वो नहीं चाहता था कि सुधीर वही गलती करे जो कभी उसने की थी। कैसा अजीब सा लड़का था वो, जिसने अपनी ज़िंदगी में अब तक किसी भी फ़ैसले के बारे में सोच समझकर कदम नहीं उठाया था, मगर आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि वो हर बात पर सोच रहा था। इसमें कोई शक नहीं था कि वो बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन इस बार उसकी बुद्धि सही राह पर चल रही थी। इंडिया में उसके बिजनेस का कोई ठोस आधार नहीं था, लेकिन अचानक ही उसने अपनी टीम बनानी शुरू कर दी थी। धीरे धीरे उसके कॉन्टैक्ट्स बढ़ने लगे थे और वो कामयाबी की दिशा में कदम बढ़ा रहा था। अब हर फैसला लेने से पहले वो रुककर सोचता, तौलता और फिर आगे बढ़ता। कभी जो लड़का सिर्फ लड़कियों के साथ रातें गुजारने में मशगूल रहता था, आज उसी के दिमाग में बिल्कुल अलग ख्याल घूमने लगे थे। वो अब किसी और दिशा में सोच रहा था। जिन लड़कियों की महफिलें उसके आसपास जमती थीं और जो हमेशा उस पर मंडराती रहती थीं, अब उनकी तरफ वो नज़र तक उठाकर नहीं देखता था। उसकी दुनिया बदल रही थी, उसके इरादे बदल रहे थे और शायद उसकी ज़िंदगी का असली मकसद अब सामने आने वाला था। खतरे उसके आसपास मंडरा रहे थे। वेदांत ने तो सोचा था कि वो उसे लड़कियों के बीच उलझा देगा, मगर उसके दिमाग में उन लड़कियों का तो नामो निशान भी नहीं था। उसकी सोच, उसकी तवज्जो, उसकी नज़र सब कहीं और लगी हुई थी। अब वो पूरी तरह से किसी और चीज़ में उलझा हुआ था। उसका मन बार बार एक ही सवाल में अटक जाता था। उसे जानना था अवनी के बारे में। ये सच कि वो उसकी बेटी है, उसकी धड़कनों को और भी बेचैन कर रहा था। जहाँ पहले उसके चारों ओर सिर्फ रंगीन महफिलें, हंसी मजाक और रातों की हलचल रहती थी, अब वहाँ सिर्फ एक बेचैनी थी, अवनी की सच्चाई जानने की बेचैनी। उसकी नज़रें अब किसी लड़की के चेहरे पर नहीं टिकती थीं, उसके कान अब किसी हंसी की गूंज नहीं ढूंढते थे। इस सब के बीच एक और स्टोरी चल रही थी, अयान की। वो अपने डैड और मॉम के पास उनके कमरे में बैठा हुआ था। उसके मॉम डैड बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। मुझे जोया की रुखसती करवानी है, उसने धीरे से कहा और कहते हुए अपनी नज़रें झुका लीं। उसे डर भी था कि शायद इस बात पर उसे डांट भी पड़े। हम तो बेटा कब से यही चाह रहे थे, मगर तुम्ही ने कहा था कि तुम्हें उसे तलाक चाहिए, उसकी मॉम ने नरमी से कहा। तुम्हें ज़िंदगी में क्या चाहिए तुम खुद जानते हो। अब जब वो तलाक के लिए तैयार है तो अब मैं उसे कैसे कहूँ कि जी तलाक नहीं होगा, उसकी रुखसती होगी। जोया क्या रहेगी? मुझे लगता है कि मेरी अम्मी, मेरे अब्बा नहीं है तो किसी की नज़र में मेरी कोई मर्जी ही नहीं है। अयान की आवाज़ भारी हो गई। ये सुनकर नावेद साहब सिर पकड़कर बैठे रहे। अयान अचानक अपनी जगह से उठा और अपने अब्बा के गले में पीछे से जाकर बाहें डाल दीं। प्लीज़ डैड, उसे मान लीजिए, देखो मैं बदल गया हूँ, मैं पहले वाला नहीं रहा, अब मुझे रिश्तों की अहमियत का पता है। उसकी इस हरकत पर नावेद साहब की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। सचमुच वो पहले वाला अयान तो बिल्कुल नहीं था। पहले वो कहाँ मानता था, जब भी उसे किसी चीज़ से रोका जाता वो गुस्से से उठकर चला जाता, गाड़ी निकालता और कहीं जाकर शराब पीता। मगर आज वही अयान अपने अब्बा को मना रहा था, समझा रहा था, जबकि वो उस पर गुस्सा हो रहे थे। बेगम साहिबा ने नावेद साहब की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारा किया, जैसे कह रही हूँ जोया को मानना ही होगा। नावेद साहब ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं जोया से बात करता हूँ, मगर पक्का नहीं कह सकता कि वो क्या करेगी। अयान ने दृढ़ आवाज में कहा, मगर तलाक तो मैं उसे हरगिज़ नहीं दूंगा, उसने कहा था कभी न कभी तो वो मानेगी ही। ये कहते हुए वो अपनी जगह से खड़ा हुआ और कमरे से बाहर जाने लगा, लेकिन उसका चेहरा उठा हुआ नहीं था, उसकी नज़रें झुकी हुई थीं, उसकी चाल मायूस थी। उसके मॉम डैड को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी कि उनके बेटे का चेहरा इतना बुझा हुआ और उदास लग रहा था। लॉन आज एक सपनों की दुनिया जैसा सजाया गया था। चारों ओर रंग बिरंगी लाइटें पेड़ों पर चिलमिला रही थी। फर्श पर फूलों की पंखुड़ियां बिखरी थी और बीच में बने स्टेज पर हल्की सुनहरी रोशनी हर किसी का ध्यान खींच रही थी। एक ओर से लोकल सिंगर की दिलकश आवाज हवा में घुल रही थी, दूसरी तरफ खाने पीने के स्टॉल से उठती खुशबू हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारों के साथ खेल रहे थे, महिलाएं अपने खूबसूरत लिबास और गहनों में एक दूसरे से बातें कर रही थीं, और मर्द हल्की हंसी मजाक के साथ कुर्सियों पर बैठे शो का मजा ले रहे थे। पूरी फैमिली एक साथ बैठी हुई थी, हर कोई अपने अपने अंदाज में उस शाम का लुत्फ उठा रहा था। इसी बीच स्क्रीन पर दूल्हा दुल्हन की बचपन की तस्वीरें चल रही थीं। कभी छोटी सी रुचिका अपनी गुड़िया को गोद में लिए दिखाई दी, तो कभी सुधीर अपने दोस्तों के साथ शरारत करते हुए, कभी दोनों के स्कूल फंक्शन की झलकियां आईं, तो कभी परिवार संग बिताए गए यादगार पल। हर तस्वीर हंसी और ताली की गूंज के साथ पूरे माहौल को और भी खुशनुमा बना रही थी। रुचिका और सुधीर जब स्क्रीन पर अपनी पुरानी यादें देखते, माहौल में रोमांस और अपनापन घुल चुका था। परिवार के बुजुर्गों की आंखों में चमक थी, मानो वे अपने बच्चों को इस तरह साथ देखकर सुकून महसूस कर रहे हों। भाई बहनें और कजिन्स एक दूसरे को छेड़ते, हंसते और तालियां बजाते नजर आ रहे थे। हर कोई उस शाम को हमेशा के लिए यादगार बना लेना चाहता था, लेकिन इस हंसी खुशी और प्यार भरे माहौल के बीच किसी को अंदाजा भी नहीं था कि आज रात इसी स्टेज और इसी स्क्रीन पर एक ऐसा राज खुलेगा। जोया आज शाम सचमुच बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसने हल्के रंग का नाजुक सलवार सूट पहन रखा था, जिसकी सादगी ही उसे और भी खास बना रही थी। उसके बाल हल्के से खुले थे और चेहरे पर एक मासूम सी चमक थी, जो जैसे पूरे माहौल को रोशन कर रही थी। वो सारा और जारा के साथ एक कोने में बैठी थी, हल्की हल्की मुस्कान के साथ दोनों से बातें कर रही थी। लेकिन जोया जितनी सहज दिखने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही बेचैनी अयान की नजरों से झलक रही थी। उसकी नजरें बार बार उसी पर टिक जाती, और जब भी उनकी आंखें टकराती, जया हल्का सा असहज महसूस कर झट से अपनी नजरें झुका लेती। अयान की उस गहरी नजर में जैसे एक अजीब सा खिंचाव था, जो जया को चैन से बैठने नहीं दे रहा था। सारा और जारा को तो बस हंसी मजाक की बातें करनी थी, मगर जया का दिल उस पल हर बार अयान की निगाहों के बोझ से तेजी से धड़क रहा था। माहौल बाहर कितना भी शोरगुल और रौनक से भरा क्यों न हो, जोया और अयान के बीच उस पल एक खामोश कहानी लिखी जा रही थी, जिसे शायद कोई और देख नहीं पा रहा था, लेकिन जया खुद उससे बच भी नहीं पा रही थी।
प्लीज मेरी सीरीज पर कमेंट करें, साथ में रेटिंग भी दें। आपको मेरी सीरीज कैसी लग रही है कमेंट में बताएं।